فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، علماء کی شان میں اللہ تعالی نے کئی آیتیں قرآن میں ذکر کی ہیں کہ جن میں سے معروف هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ہے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے مساوی ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے ہم سے، آپ سے، کہ جو ہر جگہ پر تو علم کی اتباع کرتے ہیں، نالج کو فالو کرتے ہیں، اگر بخار آ جاتا ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے نسخوں سے ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے کہ جس سے امید کی جاتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ ہمیں اب کیا ہوا ہے، اس سے بھی اگر علاج ممکن نہیں ہوتا تو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، سپر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ گھر بناتے ہیں اگر تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو گھر بنا رہا ہے اسے پتا تو ہے نا کہ فاؤنڈیشن کتنا ہونا چاہیے، کتنا لوہا لگے گا، کتنا کانکریٹ لگے گا، کیا ڈائمینشن ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنانے کے بعد پتا چلے کہ ہم نے صحیح طور پر اس کا فاؤنڈیشن نہیں بنایا اور اس کے بعد پتا چلا کہ دوسری منزل ڈالنے کے وقت کہ نہیں، یہ فاؤنڈیشن دو منزلہ بلڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو احتیاط، توجہ پوری طریقے سے اپنی صحت کی ہو، اپنی گھر کی ہو، حتیٰ اپنا لباس بھی وہیں پر سلائیں گے کہ جہاں پر اطمینان ہو کہ درزی تنگ نہ کر دے گا یا زیادہ ڈھیلا نہیں کرے گا، اس کے سینے کی مہارت اور صلاحیت اور علم کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ غلطی ہوتی ہے تو دوبارہ احتیاط کیا جاتا ہے، گھر کیونکہ بار بار بنایا نہیں جاتا تو پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اس انسان سے کہ جو اتنے احتیاطات کرتا ہے اس سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے؟ یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ مالک ہم ہر چیز جانتے ہیں، چھوٹی سی صحت کی بات ہو، بیماری کی بات ہو، ہم تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے کے پاس پہنچتے ہیں جو حاذق ہے، ماہر ہے اپنے فن کا، ہم تو خوب جانتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آئیے دین میں، آئیے دین میں، جو جتنا کم جانتا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں آپ کو دین کی صحت کی پرواہ نہیں ہے، دین سے بچنے کی کیونکہ آپ تدبیر کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو اب ضروری نہیں ہے کہ ایسے کے پاس جایا جائے کہ جس کو دین سب سے زیادہ معلوم ہے، بلکہ ایسے کے پاس جانا سوچ سمجھ کر آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں کہ جو دین سے ہم کو بچنے کے تدابیر سکھائے۔ ڈاکٹر کے پاس صحت کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس صحت کے لیے جاتے ہیں، عالم کے پاس دین کے لیے نہیں جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اے عقل مند لوگو، اے اولی الالباب، اے دماغ رکھنے والو، اے فکر رکھنے والو، تم کیا برابر سمجھ لیتے ہو ان کو کہ جو تم جانتے ہو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ اب یہ سوال کا جواب ہم کو اس لیے آج پوچھنا پڑ رہا ہے۔ شہید صدر کی شہادت کے 30 سال بعد، 32 سال، 34 سال ہو گئے ہیں، 1980 से अब तक 34 साल हो गए। मुझे याद है इसी हैदराबाद में उनकी दूसरी बरसी इनायत जंग में एक अंजुमन ने बरगुजार की थी, जिसमें उनके शागिर्द मौलाना मरहूम ज़ीशान हैदर साहब दो दिन के लिए, एक दिन ईसाले सवाब की मजलिस और दूसरे दिन तकरीर उनकी ज़िंदगी पर की थी। इनायत जंग की जोड़ी भरी हुई थी। 32 साल हो गए, इस्लाम का काफिला बहुत आगे बढ़ा, दीन की बातें और आगे बढ़ती गईं, लेकिन अब हमारी सोसाइटी में वो इराक़ नहीं रहा जो उस ज़माने का इराक़ था। सद्दाम की हुकूमत थी, आज उस पार्टी की हुकूमत है कि जिसकी मेंबरशिप अगर किसी को होती तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता, जिसको मौत के घाट उतार दिया जाता। अगर कोई आदमी आशना भी होता किसी मेंबर से उनके उस पार्टी के, तो उसको तो कम से कम 5 साल की जेल होती ही थी, चाहे उसकी उम्र 12 साल की क्यों ना हो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि जो 5-5 साल की जेल, फकत ऐसे लोगों से मिलने पर काटे हैं इराक में कि जो हिजब दावा के मेंबर थे। ये शिद्दत के साथ, ये सब होने के बाद आज हुकूमत हिजब दावा कर रही है इराक में। लेकिन आज हम इस शहीद के बारे में जो कुछ सुने हैं और सुनते रहते हैं, हमारा इस शहीद से राबिता क्या है? ये शहीद के बारे में खुसूसन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जैसा मौलाना तकी रजा साहब ने फरमाया कि ये एक मर्जे वक्त था, ये दीन के अहकाम बयान करने वाला था, ये साहेब तफसीर था, ये बड़ा मुतकल्लिम था, ये बड़ा फलसफी था, ये बड़ा मंतिकदान था, और ये सब खूबियां 47-48 साल की उम्र में शहादत पाने से पहले कई साल पहले इस शख्स में आ चुकी थी। अपने दौर का नाबिगा था, जीनियस था। आज हम इस आदमी की, इस शख्स की, इस फर्द की क्या अजमत कायल हो रहे हैं और क्यों हम इतनी कम अजमत कायल हो रहे हैं? आज हमारी ही बस्ती में कोई फाहशा आ जाए तो शायद ही कोई घर खाली होगा कि जो उसे देखने ना आए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? कोई फिल्मी हीरो आ जाए, पता चल जाए तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा कि जिसके तमाम अफराद उस घर में बाकी रहेंगे। हमें हो क्या गया है? हम अल्लाह, रसूल और अहले बैत के दीन को पेश करने वाले की जिंदगी से इतने बेरब्त हैं, तो उस इल्म के ताल्लुक से हमारा रब्त क्या होगा? जो देने वाला है, हम तो इतराते हैं ना इस बात पर कि देने वाले को क्यों भुला देते हो? आल को भूल गए, बाल लिए बैठे हैं कहते वालों में से हम हैं या नहीं है कि जो आल ने पयाम पहुंचाया, जिस रसूल ने पयाम पहुंचाया, उस रसूल को कैसे भुलाया जा सकता है? उस आल को कैसे भुलाया जा सकता है कि जब हमारे पास सलवात भेजने का तरीका अला इब्राहिम व आल इब्राहिम है। इब्राहिम का दौर आज से तकरीबन 3800 साल पुराना दौर है। रसूल का दीन 1400 साल पुराना है। रसूल से तकरीबन 2400 साल पहले जनाब इब्राहिम का दौर रहा, लेकिन 2400 साल, हमारे यहां तो अभी 1400 साल गुजरे हैं, 2400 साल गुजरने के बाद भी रसूल के दीन में आले इब्राहिम पर भी सलावात सिखाई गई 2400 साल पहले जो बात हुई थी। और आज 1400 साल हो गए हैं कि आज हमारी नमाज, चाहे वो कोई भी फिक्र हो, बगैर रसूल और आले रसूल पे सलावात के मुकम्मल नहीं होती। तो जब इतनी अहमियत इनकी है इसलिए कि इन्होंने पयाम पहुंचाया है, तो अगर पयाम की अहमियत होगी तो इनकी अहमियत होगी। हमारे पास पयाम की अहमियत घट गई है कि हमारे आलिम के पास हमारी इज्जत बाकी नहीं रही है। अगर हमारे पास इल्म की इज्जत बाकी रहती, عالم کی عزت باقی رہتی تبھی رہتی کہ جو علم وہ دے رہا ہے اس کی ہمارے پاس عزت ہوتی. ڈاکٹر کی عزت اس لیے ہے کہ ڈاکٹر کے علم کی ہم کو ضرورت ہے. انجینئر کی عزت اس لیے ہے کہ انجینئر کے علم کی ہم کو ضرورت ہے. آج ایک عالم دین کی عزت کیوں کم ہے؟ کیوں ہمارے پاس علماء کو گالی دے کر نکالا جا رہا ہے مسجدوں سے, فحش کلامی کی جا رہی ہے ان سے, اور ہم آپ دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہوتا ہو تو ہو, ہمارا کیا جاتا ہے؟ جس قوم میں عالم کو ذلیل کیا جاتا ہے اس قوم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ روایتوں میں آپ جا کر دیکھیں, ہم کو جا کر دیکھنا ہے, وہ قومیں تہس نہس ہو جاتی ہیں, دوسروں کا لقمہ بن جاتی ہیں. تم اپنے عالم کو رون دو, دوسرے تم کو رون دیں گے. خوش نہ ہو جانا کہ عالم کو ہم نے گالی دی. یہ کان ایک صاحب امامہ کو ماں کی بہن کی گالی ہے مسجد کے سامنے نماز مغرب پڑھانے سے پہلے سنا ہے, ویڈیو میں ہے, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری یہ قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس حالت میں حالت نشہ میں تھے, وہ لوگ ایک مولوی کو ماں کی بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. کیوں نہیں ہوگا کہ اتنے کم لوگ جمع ہوں گے جب شہید صدر کا تذکرہ ہوگا. 1982 سے لے کر 32 سال کے بعد ایک جنریشن جا چکی ہے, ایک جنریشن پوری جا چکی ہے. اس جنریشن میں کچھ پھر بھی غیرت تھی, آج کی جنریشن میں وہ غیرت بھی باقی نہیں رہی ہے. ہم نے دین کو کلچر سمجھ لیا اور کلچر کو دین. دین علم کا نام ہے, دین فکر کا نام ہے, دین اندازوں پر کوئی چلنے والے سلیقے کا نام نہیں ہے. اسی بنیاد پر پوچھا جا رہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون, کیا برابر ہیں؟ اللہ ہم سے سوال کر کے ہمارے سے امتحان لے کر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم ہاں کہو گے تو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرے ہوگے, اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عالم اور غیر عالم میں کوئی فرق نہیں ہے تو تمہارا ایمان نہیں ہے. دین تمام کا تمام علم پر مبنی ہے, دین تمام کا تمام علم پر مبنی ہے. ایک چیز دین میں آپ بتلا دیجئے کہ جو علم پر مبنی نہ ہو, دلیل پر مبنی نہ ہو. قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے, لا تقوم علیس لک بعلم, تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تو آیا دین میں وہ چیز ہو سکتی ہے کہ جو علم نہ ہو؟ کئی آیتیں قرآن میں ہیں جہاں پہ زن و گمان سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے. زن اور گمان, کسی چیز کا زیادہ امکان ہونا کہ وہ صحیح ہو یہ بھی کافی نہیں ہے. زیادہ امکان ہونا کہ صحیح ہو یہ بھی کافی نہیں ہے. پورا اطمینان ہونا چاہیے, دلیل محکم ہونی چاہیے, ورنہ فالو کرنے کا پیروی کرنے کا ہم کو اختیار نہیں ہے. اس لیے یہ کام کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنی فکر کو لے آئیں کہ قبلہ یہ چیز ایسی ہے مجھے یہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے یا تو اس کو صحیح کہے گا یا دلیل کے ذریعے سے کہے گا جم سوچ رہے ہو یہ چیز صحیح نہیں ہے. 80% صحیح ہو سکتی ہے مگر اس کے خلاف اور ایک دلیل ہے, دو دلیلیں ہیں کہ جو اس کو قابل قبول نہیں بناتی. یہ روایت صحیح ہے, عمل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, اس کے خلاف وہ یا تو سند میں اشکال لائے گا کہ یہ سند میں فلاں جگہ کا اوپر جو راوی ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس کو جھوٹا کہا گیا ہے, یا یہ کہے گا کہ یہاں کے اوپر اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جو اس کو رد کرتی ہیں یا اس کو چینج کرتی ہیں یا اس کے مفہوم میں تبدیلی لاتی ہیں. یہ سب کون بولے گا؟ اور آیا ہم کو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں آیا ضرورت بھی ہے آج کے تیز دور میں, انٹرنیٹ والے دور میں, کیبل ٹی وی والے دور میں, کہ آیا ہم کو یہ سب چیزوں کی باریکیوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ گھر بنانے میں تو ہے, علاج کے لیے تو ہے, آیا اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہم کو خود اپنے سے کرنا پڑے گا, یہ سوال ہم کو خود اپنے سے کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم علم کی پیروی نہیں کریں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ جہل غالب آئے گا, دوسرے جہال غالب آ جائیں گے. जो जाहिल हैं वो सोसाइटी को रन करेंगे, और जब जाहिल सोसाइटी को रन करेगा तो सबसे ज्यादा जुल्म कमजोरों पर होगा, और होते होते जो कमजोर नहीं है उन पर भी जुल्म होने लगेगा, वो जुल्म होते होते हम आप तक आ जाएगा। तो आज अगर हम समझ रहे हैं हम खाते पीते हैं ताकतवर हैं, हम पर कौन जुल्म करता है, तो जुल्म तो शुरू हो चुका है कमजोरों पर। कमजोर औरतों और बच्चों को उनका हक दिया हमारी सोसाइटी में नहीं जा रहा है। दीन अदालत के लिए आया है, इंसाफ के लिए आया है, और इंसाफ सबसे पहले सबसे कमजोर को जरूरी होता है। जो सबसे कमजोर है उसको सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा ताकत रखता है वो अपना हक खुद छीन सकता है या दिफा कर सकता है अपने हक में, हक की दिफा अपने कर सकता है, रोक सकता है दूसरों को उसका हक छीनने से। मगर बतलाइए जो सबसे कमजोर है उसका क्या हाल होता है? उसके पास तो कुछ नहीं, उसका उसकी हिफाजत कौन करेगा? दुनिया में तो उसको अल्लाह ने लाया है, उस बच्चे को दुनिया में तो अल्लाह ने लाया है। किसी की कुदरत है कि अपनी कुदरत से बच्चा दुनिया में ला सके सिवाय अल्लाह की मर्जी के? चाहे वो हलाल हो या हराम, मर्जी उसकी होगी। जब उसकी मर्जी से दुनिया में कोई बच्चा आ गया हो तो उसके कवानीन के जरिए से उसकी हिफाजत होनी चाहिए या नहीं है, और वो कवानीन उसके मां बाप पर भी लागू होंगे, वो कवानीन सोसाइटी पर भी लागू होंगे। कई जगहों पर देखा जा रहा है बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, बच्चे को गजा सही नहीं मिल रही है, या टीबी का शिकार हो रहा है, या दूसरी और बीमारियों का शिकार हो रहा है, रिकेट्स हो रहे हैं, दूसरी और डिफिशियंसीज के 25 बीमारियां हैं वो हो रही हैं। अल्लाह ने तो कानून दे दिया, मां बाप पर जिम्मेदारी कर दी। हां, जहां पर मां बाप नहीं कर सकते हो वहां पर सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी, वहां पर मस्जिद के पेश नमाज की जिम्मेदारी होगी कि अगर मेरे अतराफ में कोई ऐसा घर हो कि जहां पर भूख बढ़ रही हो, कमजोरी शिद्दत पकड़ रही हो, जहां पर तवानाई टूट रही हो, वहां पर वहां से अल्लाह के घर से हाथ बढ़ेगा सपोर्ट का। आया हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम बाकी रहा है? पहले ने अपने बाप को मां को नहीं सिखाया कि उसके हुकूक और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, दूसरे सोसाइटी वालों को? नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा यह हो रहा है कि आप इसराफ भरी शादियां देखेंगे, दूसरी तरफ गुर्बत के मारे बीमार होते हुए लोग नजर आएंगे कि जिसके पास इलाज की कुदरत भी नहीं है, और ऐसे वक्त इलाज करवाने के लिए आते हैं कि उनका इलाज कभी मुमकिन ही नहीं होता, या अगर मुमकिन होता है तो लाखों का खर्चा जरूरी होता है कि जो किसी के पास आज नहीं है। आया ये जिंदगी हमको इसलिए दी गई है कि दुनिया का तमाशा कर वापस चले जाएं, या दुनिया में अल्लाह वाले बनकर जिंदगी गुजारें? और अगर हम अल्लाह वाले बनकर जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से हमको रसूल और आले रसूल की भीख लेना है, आज हमको अपने उलमा से भीख लेना है, हमारे मराजे से भीख लेना है। हमको चाहिए नहीं, हम दुनिया के भिखारी हैं, अल्लाह के भिखारी नहीं है। यही सबसे बड़ा सानिया है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। जब शहीद को, शहीद बाखर सदर को शहीद किया गया, मेरे एक दोस्त उस जमाने में नजफ में थे, मैंने उनसे पूछा, इराकी थे, कि भाई नजफ में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 4-5 आदमी निकले कि जो एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, उन 4-5 को पकड़कर पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद उनकी सूरत देखी नहीं गई। इतना बड़ा आलिम जो अपनी जिंदगी नजफ में गुजारा, जिसको अरेस्ट किया गया, उसकी बहन को अरेस्ट किया गया, उसके बाद शहीद कर दिया गया, इत्तला मिलने पर एहतजाज, 4-5 आदमी, और हुकूमत ने उन 4-5 को खत्म कर दिया। नतीजा क्या निकला? इतनी दूर चली गई थी सोसाइटी, उसके बाद का नतीजा देखिए जो तबाही नजफ और करबला पर आई है। जिस तरीके से अमेरिका और सद्दाम ने मिलके जो कत्ल आम किया है, इतना के लोग जाके हरम में छिप रहे थे तो बाहर से क्लैशनिकोव मार के इतना फायर किया कि अंदर से खून के नहर नदी बहने लगी, हरम पर निशान पड़ गए जाली पर, लोग जो निशान देखे उन्होंने बताया है। आ गए सदर, शहीद सदर को हमारी जरूरत नहीं थी, हमको उनकी जरूरत है, उनकी फिक्र की जरूरत है, उनके खुलूस की जरूरत है। आया हम अपनी सोसाइटी में अली वाले बोलकर जिंदगी तो गुजार लेंगे कि अली की सीरत हमारे पर असर नहीं करेगी कि कमजोरों का हाथ थाम ले, ज़ईफों का हाथ थाम ले, बीमारों का हाथ थाम ले, मुफलिसों का हाथ थाम ले, यतीमों का हाथ थाम ले। ये सब करने की ख्वाहिश ने शहीद को शहीद बना दिया, ये सब करने की ख्वाहिश ने शहीद को शहीद बना दिया। बाकर सदर अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, बाकर सदर कह रहे थे जुल्म कमजोरों पर हो रहा है, इस्लाम उसका तन्हा रास्ता है, उस रास्ते के तरीके पर ही सबको इंसाफ मिलेगा। सद्दाम का कहना था कि वो तरीका हम नहीं जानते, हमको अपना तरीका पता है, हमारे अपने ग्रुप को मजबूत करना, अपनी कौम को मजबूत करना, अपने इलाके को मजबूत करना। नतीजा क्या हुआ? उनके इलाके के लोगों को मजबूत किया, जंग हुई, जंग के बाद हुकूमत पलटी, नतीजे में आज ना उनके इलाके वाले खैर से हैं ना इनके इलाके वाले खैर से हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम बीच में नहीं है, क्योंकि इस्लाम बीच में नहीं है। इस्लाम अगर बीच में होता तो वो भी इस्लाम को देखकर खैर का रास्ता इख्तियार करते, ये भी इस्लाम को देखकर खैर का रास्ता। अब हर आदमी अपने कबीले और कौम का हो गया, और जितने कबीले हो गए उतने इस्लाम हो गए, जितने कबीले हो गए उतने इस्लाम हो गए। और उसके बाद इस्लाम के नाम पर आप देख रहे हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक मुल्क तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। शिया सुन्नी, सुन्नियों में फिर झगड़े, शियों में फिर झगड़े, हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है कोई ना कोई बहाना बनाकर। ये अगर दीन की हालत हो जाएगी तो बतलाइए कि दीन के मानने वाले बाकी रहेंगे? जब तक दीन एक अच्छी मिसाल नहीं बनेगा तब तक आया दीन के मानने वाले बाकी रहेंगे? आज हमारा काम है कि कम से कम जहां पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर तो मिसाल बन जाएं, वहां पर तो मिसाल बन जाएं, वहां पर तो कमजोरों का हाथ थाम ले। अल्लाह हमारे से दूर उफ्तादा जगहों के बारे में सवाल फिलहाल नहीं करेगा। आप अगर अपने घर को पहले ठीक कर लें उसके बाद आपको पड़ोस की जिम्मेदारी समझ में आएगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा ना घर सुधरा है ना हमारी नजदीक की सोसाइटी सुधरी है। अगर हम सब हाथ मिलाकर इसराफ से परहेज कर फजूल खर्चियों से बचकर जहां तक भी मुमकिन हो सके अपने आप को सेंट्रलाइज करेंगे तो वहां पर हमारे कमजोर तवाना बन जाएंगे, हाथ बढ़ाने वाले कर देने वाले बन जाएंगे। जो आज हाथ बढ़ा रहा है कल वो हाथ देने वाला बन जाएगा। है मुमकिन या मुमकिन नहीं है? शहीद सदर की कोशिशें वही थी। आज हम शहीद को याद करते हैं इसलिए याद करते हैं कि वो रास्ते के लिए शहीद हुआ कि जो ता क़यामत जिंदा रहने वाला है, इसलिए शहीद भी जिंदा रहता है। वो आदमी जो दुनिया के लिए फना होता है वो दुनियावी आरजुओं को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बढ़ता है, उसकी आरजू उसके फना होने से खत्म हो जाती है। शहीद सदर की आरजू अभी खत्म नहीं हुई है, उसी तरीके से कि जैसे कि रसूल की आरजू खत्म नहीं हुई, अली की आरजू खत्म नहीं हुई, इमाम हुसैन की आरजू खत्म नहीं हुई, जनाब फातिमतुज़्ज़हरा अलैहिस्सलाम की आरजू खत्म नहीं हुई, इनकी सब की आरजुएं ता क़यामत बाकी हैं। उस तरीके से शहीद सदर की भी आरजू ता क़यामत बाकी रहेगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने दौर में इस किस्म के शहीद को जो शहादत इख्तियार किया। मैं बार बार कहता हूं एक शहादत है जहां पर गोली लगती है आदमी मर जाता है। शहीद को ऑप्शन था अपने आप को बचा लेने का। सद्दाम ने यह भी ऑफर किया था कि देखो वो काम जो हम अच्छे कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव फैला रहे हैं, कम अज कम उसकी तारीफ कर दो, कम अज कम उसकी तारीफ कर दो। शहीद ने इनकार किया, कहा कि बुनियाद सही नहीं है। मैं रोड बनाना गलत नहीं है कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी गांव को ले जाना गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना गलत है, तरीका जुल्म पर मबनी है। आया अगर यजीद कुछ काम अच्छे कर देता तो हम उसकी तारीफ कर देते, जबकि दीन ही को खत्म कर रहा हो। अल इस्लाम अस्सलाम इस बुलियतिल उम्मतो बिर्रायिन मिस्ल यजीद, इमाम का इरशाद है, फरमाते इमाम हुसैन के इस्लाम को खुदा हाफिजी करनी पड़ेगी अगर यजीद जैसा जालिम इस्लाम की उम्मत पर इमाम बनकर बैठ जाए। चार अच्छे काम कर लेना बुनियाद नहीं है, रास्ता बुनियाद है। आज के दौर में भी मैं बतलाता हूं, आज इलेक्शन का जमाना है, किस किस्म का बड़ा जालिम प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है, कोई शक? जब जुल्म बढ़ता है और जुल्म को कबूल किया जाता है तो एक से एक बदतर जालिम बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है। यह तो हिंदुस्तान की सतह पर, आपके महल्ले की सतह पर भी आप देखेंगे, आपके शहर की सतह पर भी आप देखेंगे। ये चीजें ऐसी नहीं है कि अगर हम जुल्म का मुकाबला सही नहीं करेंगे तो जुल्म हमारे तक नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। इत्तकु फितना ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमु मिनकुम खासा, उस फितने से, उस आजमाइश से बच जाओ जो तुम में बुरे लोगों तक, जालिमीन तक होकर नहीं रहेगा, तुम्हारे तक भी पहुंच जाएगा। अल्लाह क्या क्या बोलकर इंसान को कर रहा है, याद दिला रहा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सिवाय उलमा के कोई अल्लाह से नहीं डरता। उसका मतलब नहीं ये है कि वो लोग जो दीन की तालीम जाकर हौजों में पढ़कर आते हैं, मुराद ये है कि अगर तुम उलमा से इल्म हासिल नहीं करोगे तो तुम्हारा खौफ खुदा करना भी मुमकिन नहीं है। कुरान तो गलत बोल नहीं सकता, नहीं अल्लाह से खशिया करते डरते हैं सिवाय उनके कि जो इल्म रखते हैं, उलमा हैं। तो या तो आदमी आलिम बने या तो ले आलिम से, जिस तरीके से हमको रिवायतों में मिलता है कि हम आलिम हैं और तुम मुतअल्लिम हो यानी सीखने वाले हो, इसके अलावा जो कुछ है वो खसो काशाक है, कचरा है। अहले बैत का इसरार यह है कि हम आलिम हैं और तुम मुतअल्लिम बन जाओ, इल्म लेने वाले बन जाओ। और आइम्मा का, रसूलों का, अंबिया का, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की किताबों का इल्म किसको किससे मिला है? उनसे रसूलों को, रसूलों से आइम्मा को, आइम्मा से उलमा को, और उलमा से हमको। हम इस रास्ते को काटे ना, इस सुन्नत को तोड़े ना, अगर तोड़ेंगे तो हमारा हाल भी दुनिया में खराब होगा, आखिरत में इससे भी ज्यादा खराब होगा। जो दुनिया में जुल्म नहीं समझ सकता, कमजोर की हिमायत को हिमायत नहीं समझ सकता, क़यामत के दिन उसको उसी के साथ महशूर किया जाएगा कि जो जुल्म नहीं समझ सकता था और जो कमजोर की हिमायत को का मफहूम समझ नहीं सकता था। आया हम उनके साथ महशूर होना पसंद करेंगे कि जो ना जुल्म का मफहूम जानते हैं ना मदद करना कमजोरों को अपनी जिंदगी का फरीजा समझते हैं? हमारी जिंदगी के फरीजे अपना पेट भर लेना एक इब्तदाई फरीजा है, ऐसे ही जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई गाड़ी यह समझती है कि मेरे में पेट्रोल का आ जाना ही काफी है, चार दिन के बाद उसके इंजन में जंग लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि पेट्रोल इसलिए डाला गया था कि गाड़ी आगे निकले, चले। हमने यह समझ लिया कि अपना पेट भरना जो फकत पेट्रोल है, ये पेट भरना ही हमारी जिंदगी है। अलग अलग तरीकों से हम पेट भरेंगे, और जब पेट भर जाएगा तो मुख्तलिफ मनाजिर हम देखेंगे, चाहे टेलीविजन पे हो, इंटरनेट पे हो या जाहिर। आया इंसान की ये जिंदगी, हयात दुनिया जिसको कुरान कहता है, इस पर हमको अहमियत देनी चाहिए। जब ऐसे शोहदा हमारे सामने अपने दौर में मौजूद हैं, अल्लाह ऐसों को सामने लाएगा कि जिन्होंने शहादत तुम्हारे सामने हमारे मकासिद को आगे बढ़ाने के लिए की थी, जब उन्होंने अपनी जान दे दी तो तुमने अपनी थोड़ी कोशिश क्यों नहीं की? जवाब में हम क्या कह सकेंगे सिवाय इसके कि हम गाफिल थे, और गाफिल जन्नत में तो नहीं जाएगा, गाफिल जन्नत में तो नहीं जाएगा। जितने आप आयतें पढ़ेंगे गफलत के ताल्लुक से, उलाइका हुमुल गाफिलून, उलाइका हुमुल गाफिलून, वहां बार बार आप देखेंगे जब इंसान गफलत करता है तो अल्लाह की निशानियों से मुंह फेरता है। जैसे अल्लाह की निशानियों से मुंह फेरता है उसका ईमान रुखसत हो जाता है, जैसे ईमान रुखसत होता है दुनिया उसको 10 बराबर, 100 बराबर, 1000 बराबर रंगीन नजर आने लगती है। ये बुराई है। हम समझते हैं कि हम ये रास्ते से छोड़ दिए तो दुनिया हकीकत, अल्लाह ताला का उसूल वैसा नहीं है। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छा दुनिया को रंगीन देखना चाहते हो, तुम्हारे को 100 गुना बढ़ा दूंगा, 1000 गुना बढ़ा दूंगा, इतना रंगीन कर दूंगा कि उसके बाद तुम्हारी आंखें खीरा हो जाएंगी और तुम्हारी रूह परवाज कर जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि वो रंग हकीकत नहीं थी। तुम चाहते थे ना, हमने तुम्हारे लिए कर दिया, लो हमारे पास वसीले हैं, हम नहीं करते तो शैतान कर देता है। अल्लाह قرآن میں فرما رہا ہے کہ زین اللہ اعمالہم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان ان کے اعمال ان کو مزین کر کر زیادہ رنگ بھر کر بتلاتا ہے اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. آج جب ہم یہاں جمع ہوئے فقط اور فقط اس شہید کی یاد کے لیے، ہم یہ سب چیزوں پر نظر کریں، اپنی زندگیوں پر نظر کریں، اور کر کر میں آپ میں سب میں شامل ہوں، جتنی آپ کی کمزوریاں اتنی میری کمزوریاں 10 زیادہ ہی ہوں گی، 100 زیادہ ہی ہوں گی، لیکن ہم کو سب کو مل کے اپنی کمزوریوں کو کم کرتے ہوئے، اچھائیوں کو بڑھاتے ہوئے، کمزوروں کی کوشش کریں کہ کم از کم کمزور پر ظلم ہونے نہ پائے ہمارے سوئے. کمزور بچے، کمزور عورتیں، بوڑھے مرد اور عورتیں، یہ سب کے سب ہماری سوسائٹی میں سفر ہو رہے ہیں. دعا کرنا ہے ہم کو اس شہید کے توسل سے کہ جس کی کا خون اس اعلیٰ مقصد الہی کے لیے بعنوان قربانی پیش کیا گیا ہے، کہ مالک ہم میں اس شہادت کے طوفیل میں وہ جذبہ عطا فرما کہ جس جذبے کے ذریعے سے ہم تیری قربت اختیار کریں اور تیری نظر سے دنیا کو دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے، شہید صدر کی نظر سے دنیا کو دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے، امام حسین کی نظر سے دنیا کو دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے، جناب فاطمۃ الزہرا کی نظر سے دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے، مولا علی کی نظر سے دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے، رسول اکرم کی نظر سے دیکھیں نہ کہ اپنی نظر سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.